مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا بہت ہی خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ آج بھی انشاءاللہ ہم حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کے خوابوں کی تعبیریں بیان کرتے ہیں، آپ ہم سے سوال کرتے ہیں اور اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ پروگرام میں قبلہ استاد محترم حضرت مولانا محمد اسد اتاری مدنی صاحب زیدہ لطفہ کرم فرما ہوتے ہیں، اور ان سے ہم جانتے ہیں آپ کے خوابوں کی تعبیریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بھی عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھتے جائیے اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرتے جائیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ استاد محترم حضرت مولانا محمد اسد اتاری مدنی صاحب، سیدی خوش آمدید۔
جزاک اللہ۔
میں یہ چاہوں گا کہ ابتدان، جیسا کہ ہمارا ایک اسکیجول ہے کہ ہم ناظرین کو کچھ مدنی پھول آپ کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں، تو آج آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
غوث پاک کا یہ پیارا مہینہ ہے، آپ کے عرس کا مہینہ ہے، دنیا بھر میں عاشقان اولیاء بڑی 11ویں شریف کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جہاں سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، انہی میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بہت زبردست عالم تھے۔ اپنے زمانے کے بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، جن کے نام علمی دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہیں، آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کیا کرتے تھے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کا جو علم دین حاصل کرنے اور پھر اس کو عام کرنے کا پہلو ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ علم کے جو ہر مسلمان پر سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے، جس کو ہم فرض علم سے تعبیر کرتے ہیں، وہ تو حاصل کرنا ہی چاہیے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ جانتے ہی نہیں کہ ان پر کیا کیا فرض ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں علم دین پر بڑا زور دیا جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی اس ماحول کے قریب آتا ہے وہ علم کی طرف ضرور رغبت رکھتا ہے۔ اور یقین کریں، ہماری زندگی کے جتنے پہلو ہیں ان تمام کے اندر اگر علم نہ ہوگا تو ہم بہت مقام پر مسٹیک کر سکتے ہیں۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کاروبار کرتا تھا اور زراعت کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ اب یقین کریں، تھوڑی گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ زراعت کے ڈپارٹمنٹ میں جو بھی وہ کام کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ان کا طریقہ کار ہے وہی غلط ہے۔ اب وہ اچھا بھلا پڑھا لکھا شخص ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دین کا علم نہیں ہوگا تو جو رہنمائی میں کر سکتا تھا پھر دارالافتاء کی طرف ریفر کیا، لیکن معلوم یہ ہوا کہ لوگ صدیوں سے زراعت کر ہی رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے، وہ کس طرح سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کس طرح سے منڈی میں مال جاتا ہے، منڈی والے کس طرح سے رقم دیتے ہیں، آپس میں ان کی جو حصہ داری اور تقسیم کاری ہوتی ہے، جو کھیتوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، اسی طرح آڑتی ہوتے ہیں، یہ 3-4 اسٹیپس کے اندر کام ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو ان کے آپس کے معاملات ہوتے ہیں اس میں کئی مسائل ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکھا نہیں، اب یہ جو بھی ٹریڈیشنل طریقے سے جو بھی ایک باپ دادا سے طریقہ کار چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق لوگ جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن اویئرنیس نہیں ہوتی، علم حاصل کیا نہیں ہوتا۔ خواہ وہ زراعت کا شعبہ ہو یا کوئی اور بزنس کا تعلق ہو تو اس کے اندر معاملات ہوتے۔ تو غوث پاک سے محبت کرنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کی سیرت کا جو علم کا پہلو ہے اسے ضرور حاصل کریں، मालूमात करें और कुछ ना कुछ ज़रूर मुताला करें। फिज़ान मदीना तशरीफ़ ले आएँ, नमाज कोर्स कर लें, फ़र्ज़ उलूम कोर्स कर लें, और बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज ऑनलाइन भी होते हैं, जो भी तरीका आपके लिए आसान हो। लेकिन अल्लाह पाक से इल्म के हुसूल की दुआ और तमन्ना हम सबको करते रहना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह करीम हमें इन बातों पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। इसके लिए आप दुआ भी करें और दवा भी करें, तो इंशाल्लाह ये जो बातें हैं ये आपकी ज़िंदगी के गुलदस्ते में इंशाल्लाह ये खुशबू बखेरने के लिए और आपकी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाने के लिए ये बातें इंशाल्लाह बहुत आपके काम आएंगी इंशाल्लाह। भाई बढ़ते हैं आपके सवालात की जानिब और देखते हैं कि आज आप हमसे क्या सवाल पूछना चाहते हैं। जी दिखाइए।
अब्दुल माजिद अत्तारी, अरब शरीफ। मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर कोई ख्वाब में बार बार सांप को देखता है और सांप उसको डसता नहीं है बल्कि देखने वाला सांप को मार देता है हर दफा, तो इसकी अबीर क्या हो सकती है?
जी सब क्या है, सांप का देखना बुरा होता है, अच्छे शख्स की अलामत नहीं है, लेकिन उस पर गालिब आ जाना और जैसा कि आपने कहा कि बार बार उसको मार देना, ये दुश्मन पर नुकसान पहुंचाने वाले पर, उस बुरे शख्स पर गलबा पाने की अलामत होती है। तो नतीजतन ये ख्वाब अच्छे हैं, जो भी ये शख्स देखता है, तो अल्लाह पाक के बारगाह में दुआ भी करे कि अल्लाह पाक उसे दुश्मन पर गलबा अता फरमाए और अपने मामलात को भी अच्छे अंदाज पर करे, अपनी सोबत पर, अपनी कंपनी पर, उठने बैठने पर गौर करता रहे कि कहीं उसके साथ कोई ऐसा शख्स तो नहीं लगा हुआ जो करीब भी है और उसका खैर ख्वाह भी नहीं है। तो हमें कॉन्शियस भी रहना चाहिए और बहुत अच्छा होता है जैसे कि आपने कहा कि मुसलसल वो ये ख्वाब देखता है, तो अल्लाह की बारगाह में उसके राह में कुछ ना कुछ सदका ज़रूर करें और एक बेहतरीन मौका सदका करने का, राय खुदा में खर्च करने का टेलीथोन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तमाम दीनी कामों के जुमला अखराजात के लिए 13th of November यानी कि अब चंद दिन के बाद ही ये आने वाला है, तो अभी से उसकी तैयारियां करें, खुद भी नियतें करें और दूसरों को भी करवाएं। तो अल्लाह की राह में खर्च करना बलाओं से, मुसीबतों से, दुश्मनों से हिफाजत का सामान होता है।
अजीज सवाल दीजिए।
मेरा नाम मोहम्मद फैसल अत्तारी, मेरा ताल्लुक कराची पाकिस्तान से। अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसके इम्तहान यानी पेपर सर पर हैं और वो उसकी तैयारी नहीं कर रहा और सोच रहा है कि बाद में करूँगा, और जैसे ही पेपर देने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं आ रहा होता है, तो ये ख्वाब बार बार उसे आता है, तो इसकी क्या ताबीर होती है? इशारत फरमा दीजिएगा। जज़ाकअल्लाह खैरा।
आमीन आमीन। वेरी इंटरेस्टिंग।
ये तो एक इस्लामी भाई ने अपना ख्वाब बयान किया, चलो ख्वाब के बारे में अर्ज करता हूँ। हकीकत भी यही है कि आज नहीं तो कल, जो भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे होंगे, हर साल के इंतहा में नियत होती है यार इस दफा तो लेट हो गया यार, क्या ये सर पर सवार हो गया, अगले साल तो पहले दिन से मुझे पढ़ना है। तो जैसे नया साल शुरू होगा फिर वही रूटीन, छमाही गुजर जाएगी, अभी तो 9 माह बाकी हैं, फिर छमाही गुजर जाएगी, अभी तो 6 माह बाकी हैं, और वही होता है जो हर साल होता है, पेपरों के दिन करीब आ जाते हैं। और सबके साथ तो ये नहीं होता
पढ़ने वाले
के कुछ भी नहीं आए, लेकिन फिर वो गिरते पढ़ते करते अफसोस, अपने आप को मलामत करते कराते, जो भी है फिर आखिरी दिनों में जो भी हाल हो रहा होता है, तो बहरहाल कुछ निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो एक तो ये है कि हकीकी दुनिया में हमें इसको कहते हैं पेंडिंग करना, किसी भी काम को, स्टूडेंट्स अपनी तैयारी को करते हैं, बिजनेसमैन अपनी डील्स को करते हैं, इदारों में काम करने वाले अपने कामों को करते हैं, तो जो भी पेंडिंग्स का आदि होता है उसकी जिंदगी फिर ऐसी होती है और वो हमेशा परेशानी रहता है। रही ख्वाब की बात, तो देखिए एक रूटीन की चीज है, हो सकता है जिसने ख्वाब देखा है वो वाकई स्टूडेंट हो, और स्टूडेंट्स की लाइफ में इस तरह की चीजें होती रहती हैं, तो इस पर हम किसी ताबीर को तो बयान नहीं करेंगे कि ऐसा ही उसके साथ होगा, वो अपने हालात वाकयात पर गौर कर ले कि हकीकत में उसकी रूटीन क्या है। अगर वाकई ऐसा है तो ज़ाहिर उसके लिए एक तंबीह समझ लें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, न जागते हुए करना चाहिए, न ख्वाब में ऐसा करना चाहिए। बहरहाल इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, अलबत्ता अगर कोई वाकई स्टूडेंट है उसे अपनी तैयारी और चीज़ों को अच्छे अंदाज पर देखना चाहिए।
बिल्कुल जी, मजीद सवाल दीजिए।
मेरा नाम कामरान भवानी है, मैं और मेरी वाइफ कहीं जा रहे हैं और बारिशें बहुत तेज हो रही हैं, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, तो मेरा बेटा है वो हाफिज बन रहा है, तो ये देखा ख्वाब में कि वो डूब रहा है पानी में, हम उसको बचा रहे हैं, वो फिर डूबता है फिर बचाते हैं, वो फिर डूबता है फिर बचाते हैं। इस ख्वाब के सिलसिले में मुझे मालूम करना था इसकी ताबीर क्या है।
ऐसा देखना कैसा है?
देखिए, पानी में डूबते हुए देखना तो अच्छा नहीं होता,
ठीक है,
ये आजमाइश की अलामत होती है, किसी दुश्वारी का सामना करने की दलील होती है। तो अपने बेटे के लिए दुआ भी करें, और अगर वो अपनी पढ़ाई में या अपनी लाइफ में किसी मुश्किल या स्ट्रगल का शिकार है तो उसके साथ अच्छे अंदाज पर बातचीत की जाए, पूछा जाए, अगर वो किसी चीज में कंफ्यूज है तो उसकी कंफ्यूजन दूर की जाए, और अगर उसको किसी माली इमदाद की या किसी सहूलत की हाजत है पेश की जाए। माशाल्लाह आपका बेटा तो हिफ्ज कर रहा है, कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहा है, यानी कि दुनिया की जो बेहतरीन तालीम है वो हासिल कर रहा है, तो उसके लिए तो हमें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। तो पूछ लिया जाए बेटे से कि अगर कोई मुश्किल है तो उसको आसान किया जाए। बाज़ औक़ात ख्वाब के जरिए हमें किसी चीज़ के बारे में खबर दी जाती है और बंदा उस पर गौर करे तो फिर उस मामले से निकलना उसके लिए आसान हो जाता है।
सवाल ये है कि मैंने ख्वाब में ये देखा है कि मेरी जो है वो शादी जहाँ हुई थी अब तलाक हो चुकी है, और ख्वाब में दोबारा शादी जो है वो देखी है और उसी शख्स के साथ के जिससे तलाक हुई है, और मैं ख्वाब में ये देखती हूँ कि मैं रो रही हूँ और मेरे साथ वो शख्स बैठा हुआ है, और इसी तरह ये भी देखा है कि अब जो है उस शख्स की शादी हो चुकी है और उसके औलाद भी है, लेकिन बार बार वही शख्स मेरे ख्वाब में आता है और उसकी वजह से मैं तकलीफ में हूँ। बराए करम इसका जवाब इरशाद फरमाइए।
अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए। कोई भी मुसलमान है, ख्वाब वो मर्द है या औरत है, तलाक होना ये ज़ारे के आसान नहीं होता, दोनों फैमिलीज के लिए और ख़ासतौर पर जो मियाँ बीवी होते हैं उनके लिए एक आजमाइश होती है, तकलीफ दे मामला होता है। खुशी पर ज़ारे के निकाह ख़त्म नहीं किया जाता, कोई ना कोई ऐसे मामला हो जाते हैं, तो अल्लाह पाक से आफियत का सवाल करना चाहिए। अब चूँकि वक्त गुजरा होता है, एक माजी की याद होती है, कुछ अगर तवील अरसे तक निकाह रहा और अगले निकाह में दोनों रहे तो जाहिर है कि एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा होता है, तो पुराने ख्यालात जो है वो ख्वाब की शक्ल में आ जाते हैं, फिर बहुत सारे खदशात, बहुत सारे ऐसे तहफ़ुज़ात कह लें, बहुत सारी चीज़ें इस तरह के ख्वाबों का बाइस हो सकते हैं। तो नंबर वन तो ये है कि देखिए आपकी अलहदगी होगी, जाहिर हम उस पर कोई बात या कलाम नहीं कर सकते कि वो किस मामले पर हुई, किस वजह से हुई, किस तरह से हुई, दुरुस्त हुई, गलत हुई, जो भी है वो ज़ाहिर है कि एक पर्सनल मैटर होता है, तो वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो हो चुका जो होना था। अलबत्ता ये मैं ज़रूर अर्ज करूँगा कि आप इस ख्वाब की तरफ ज़्यादा तवज्जो ना करें और इस मामले पर ज़्यादा गौर ना करें। अब उनकी शादी हुई नहीं हुई, ख्वाब में क्या होता है नहीं होता, तो बाज़ औक़ात शैतान भी परेशान करता है और आकर इस तरह की चीज़ें दिखाता है, और ज़ाहिर है कि जैसे कि आपने भी बयान किया कि इसकी वजह से आपको परेशानी का सामना है, तो नंबर वन तो ये है कि आप इसकी तरफ से ध्यान अपना हटाएं और इस ख्वाब की बुनियाद पर अपने लिए कोई ऐसा ख्याल मुकर्रर ना कर लें कि ऐसा ही होगा, और ना ही इस ख्वाब की बुनियाद पर कोई ऐसा इकदाम किया जा सकता है। निकाह हो या तलाक हो या फैमिली के मैटर्स हों, तो ख्वाबों पर उसकी बुनियाद नहीं रखी जाती, बल्कि जो शरीयत ने हमें ज़ाहिरी उसूल व ज़वाबित ज़िंदगी गुजारने के अता किए हैं उन पर डिपेंड करके हमें अपने फैसले करने चाहिए। तो जहाँ तक ख्वाब का मामला है तो आप इसकी तरफ तवज्जो ना करें, आ जाते हैं, और जितना आप इससे अपने आप को दूर रखेंगे तो इंशाअल्लाह ऐसे ख्वाब आना भी बंद हो जाएंगे। अल्लाह पाक आसानी वाला सबके लिए मामला फरमाए,
अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। एक और सवाल शामिल यहाँ करना चाहूँगा। सवाल ये है कि कहते हैं एक सफ़र है जहाँ मैं जाती हूँ, और लेकिन मंजिल कौन सी है, कहाँ पहुँचती हूँ ये नहीं पता चलता, और किसी मुश्किल में फंस जाती हूँ, तो ये मेरा ख्वाब है और इस पर आप कुछ इरशाद फरमाइए।
बहुत मुबहम है और हमें नहीं मालूम कि आप वाकई कोई काम भी करती हैं या लेडीज़ का ही ख्वाब है ना,
जी जी,
या आप कहीं पे सफ़र का इरादा रखती हैं नहीं रखती है। अलबत्ता रास्ते का भटक जाना, खो जाना, ये ताबीर के अतबार से अच्छा नहीं होता। इसमें अपने मामलात पर गौर करें, कहीं कोई ऐसा काम तो आपसे सरजद नहीं हो रहा या कोई ऐसी मसरूफियत कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिस पर शरान कलाम हो सकता हो, तो अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखें और अल्लाह पाक की जानिब रुजू रखें, तौबा इस्तिगफार की कसरत करती रहें, इंशाल्लाह बेहतरी वाला मामला।
मजीद सवाल दीजिए।
असद भाई, ये इरशाद फरमाए कि एक बहन है और बार बार ख्वाब ये देख रही है कि पूरे के पूरे ऊपर नीचे के दांत टूट कर हथेली में आ रहे हैं, तो इसकी ताबीर क्या होगी और ये ख्वाब बार बार आता है?
देखिए, दांतों का टूटना तो अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर जमीन पे नहीं गिरे, हाथ में ले लिए या दामन में ले लिए, तो ये नुकसान से हिफाजत की अलामत होती है। तो अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, कुछ सदका करें और अपने रिश्तेदारों में गौर करें, अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, कोई आजमाइश में है, तो उसकी मदद की जाए।
ठीक है, मजीद सवाल दीजिए।
ख्वाब ये है कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई 2017 में, कल रात को मैंने देखा है जब वो मेरे पास आ रहे थे कुछ बंदों के साथ, बड़ा गुस्से गुस्से आ रहे थे, नाराजगी के इजहार में।
वालिद साहब,
अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए, जिंदगी में हो सकता है वालिद साहब ने कभी गुस्सा किया हो जाता है और वही इम्प्रेशन आपके जहन में रह गया हो, तो अब ख्वाब की बुनियाद पर जाहिर परेशानी होती है कि पता नहीं वालिद साहब मुझसे नाराज हैं या क्या है, तो हम ये हुक्म नहीं लगा सकते, ज़रूरी ऐसा नहीं होता। अलबत्ता ये ज़रूर गौर कर लें कि आप अपने वालिद साहब को इसाले सवाब करते हैं नहीं करते, उनके लिए दुआ करते हैं नहीं करते, तो अगर करते हैं तो उसमें इजाफा कर लें और अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दें। माँ बाप का ये हक होता है दुनिया से चले जाने के बाद कि औलाद उनके हक में दुआ करती रहे, इसाले सवाब करती रहे, और ये उनके लिए राहत का बरकत का बाइस होगा और इंशाअल्लाह इसका सवाब अल्लाह पाक आपको भी अता फरमाए।
क्या बात है, क्या बात है। मजीद सवाल दीजिए।
असद भाई, ख्वाब के अंदर कच्चा दूध पीते हुए देखना, इसकी तबीर क्या होगी, रहनुमाई फरमा दीजिए।
जी,
दूध का पीना अच्छा है,
सही
इल्म की नेमत की दलील होती है, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएगा, अच्छा ख्वाब है।
ठीक है जी, हमारे पास इस वक्त फेसबुक पर भी नाजरीन जो है वो सवालात कर रहे हैं और एक सवाल ये है कि सर, ख्वाब में खुद को गुस्ल करते हुए देखना ये कैसा है और सफेद चावल जो है वो ये देखना ये कैसा है?
गुस्ल करते हुए, नहाते हुए?
जी, नहाते हुए।
चावल का देखना अच्छा है, रिस्क में बरकत की अलामत है।
ठीक है,
और नहाते हुए देखना भी बेटर। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस तौर पर था, लेकिन एक सफाई और पाकी हासिल करने का जरिया है।
सही,
वो पॉजिटिव है, अल्लाह पाक कोई अच्छी खबर और कोई नेमत, किसी मुश्किल से छुटकारा अता फरमाएगा, अच्छा ख्वाब।
ठीक है जी, एक और सवाल है हमारे पास, ये कहते हैं सर, मैंने हरे रंग की छिपकलियां जो है वो देखी हैं, ये जैसे बड़ी वाली होती हैं वो, ये रफीक शेख साहब हैं ये सवाल पूछ रहे।
छिपकली का देखना अच्छा नहीं होता, बुरे शख्स की दलील होती है, चुगलखोर है, गीबतें करने वाला है, आपस में लड़वाने वाला है, तो गौर करें कि आपके अतराफ में आसपास उठने बैठने में कोई ऐसा शख्स तो नहीं है कि जो इस तरह के गलत मामलात में मुब्तला हो, आपको आकर किसी की बातें बताता हो, तो चूंकि इसकी अच्छी अलामत नहीं है, इसलिए गौर करें और अल्लाह पाक के बारगाह में आफियत का सवाल भी करें। बहुत सारे ऐसे हमारे मामलात हैं कि जो बुरी सोहबत की वजह से होते हैं, बुरा उठना बैठना, बुरी दोस्तियाँ, बुरे लोगों के साथ ताल्लुकात, तो अपनी सोहबत को, अपने ताल्लुकात को हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर देखना चाहिए। और दावत इस्लामी का दीनी माहौल हमारे लिए इस तौर पर एक बहुत बड़ी नेमत है, हफ्तावार इज्तिमा होता है जुमेरात को, जैसे आज भी है, उसमें शिरकत करें, मदनी काफिलों के मुसाफिर बने, मसाजिद के अंदर फैजान सुन्नत से दर्स होते हैं उसके अंदर शिरकत करें, यानी कोई भी अपनी ऐसी दीनी एक्टिविटी और आशिकाने रसूल के साथ उठना बैठना ये अपनी लाइफ का हिस्सा रखें, इंशाअल्लाह बहुत सारी बुरी आदतों से, बुरे दोस्तों से छुटकारा नसीब होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का और हम आपको इसमें एक खूबसूरत पैकेज दिखाते हैं, सच्चे ख्वाब और सच्चे ख्वाब शख्सियात के ख्वाब, वो क्या ख्वाब है, क्या उनकी तबीरें हैं, क्या वाकया है, क्या स्टोरी है, आइए ये सुनते हैं और इंशाल्लाह जब प्रोग्राम में दोबारा वापस लौटेंगे तो आपके मजीद सवाल जो है वो शामिल करेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीजीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाजरीन, वक्त हुआ है सेगमेंट का जिसमें हम मुख्तलिफ ख्वाब बुजुर्गों से मुतालिक صحابہ و اولیاء سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور آج کا جو خواب ہے مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بڑا ہی پیارا ایک خواب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی. جب نماز اختتام کو پہنچی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محراب سے مسجد کے دیوار سے ٹیک لگا کر تشریف فرما ہو گئے. میں بھی وہاں پر حاضر تھا. اتنی دیر میں خاتون حاضر خدمت ہوتی ہیں اور کچھ کھجوریں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں سے ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے علی کیا کھاؤ گے؟ میں عرض کرتا ہوں جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ کھجور عطا فرماتے ہیں. پھر دوسری کھجور اٹھاتے ہیں اور وہی سوال کرتے ہیں کہ اے علی کیا کھاؤ گے؟ میں عرض کرتا ہوں جی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسری کھجور بھی مجھے عطا فرماتے ہیں. میں وہ بھی کھا لیتا ہوں. اتنی دیر کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. سبحان اللہ, جو خواب کے اندر کھجوریں عطا کی گئی تھیں ان کا ذائقہ مجھے جاگنے کے بعد بھی اپنے منہ میں محسوس ہو رہا تھا. اتنے میں میں وہاں سے اٹھا اور مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا اور وہاں پر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی. آپ نے نماز ادا کی اور نماز کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر محراب کے پاس تشریف فرما ہو گئے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ کچھ دیر میں ایک خاتون آئیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں پیش کی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک کھجور اٹھائی اور کہا کہ اے علی, اے میرے بھائی, کیا تم کھاؤ گے؟ میں نے کہا جی ہاں. تو مجھے ایک کھجور کھلائی. پھر دوسری اٹھائی اور سوال وہی کیا اور میں نے کہا جی میں ضرور کھاؤں گا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے دوسری کھجور بھی عطا فرمائی جو میں نے کھا لی. اس کے بعد جو بقیہ کھجوریں تھیں وہ دیگر صحابہ کرام میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تقسیم کر دی. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں مزید کھجوریں کھانے کی خواہش تھی اور میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تو سبحان اللہ, امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی, اگر رات کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی دو سے زیادہ عطا کرتے تو میں بھی تمہیں زیادہ دیتا. اللہ اکبر. گویا کہ یہاں پر خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو یہ خوبصورت معاملہ درپیش ہوا, اللہ پاک نے اس کی خبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی تھی. مولا علی فرماتے ہیں کہ میں انہی خیالات میں تھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی, مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ کی شان ہے کہ اس نے اپنی عطا سے اپنے مقبول بندوں کو, اپنے نیک بندوں کو, مخلوق میں سے جسے وہ چاہے چنے ہوئے بندوں کو وہ طاقتیں عطا کی ہوتی ہیں کہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور مومن اللہ کے نور سے وہ کچھ دیکھ لیتا ہے کہ عام شخص کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی. سبحان اللہ, اس میں جہاں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ولایت کا اظہار ہے, وہیں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ پاک کی بارگاہ میں, پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو شان اور عظمت ہے اس کا بھی اظہار ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس میں کیا پیار تھا, کیا محبت تھی, کیا الفت تھی اور کتنے پیارے انداز پر یہ آپس میں ایک دوسرے سے انچیک کیا کرتے تھے, یہ بھی ہمیں پتہ لگتا ہے. اللہ پاک کی ان پہ کروڑ ہا کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. انشاءاللہ مزید خوابوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ویلکم بیک ناظرین, آپ نے یہ واقعہ سنا اور یہ چیزیں آپ نے ملاحظہ کی. آپ اس پورے واقعے میں کیا سیکھے یہ آپ ہم سے ضرور شیئر کریں. اور ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ہے support@madinichannel.tv. ایک سوال جو ہے وہ شامل میں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سوال یوں ہے कि असद भाई आपने कोई ख्वाब की ताबीर पर कोई किताब वगैरह लिखी है? अगर लिखी है तो इसका नाम बताइए, हम खरीदना चाहते हैं।
नहीं, किताब तो नहीं लिखी माशाल्लाह, बुजुर्गों की एक से बढ़कर एक किताबें हैं। और सच्ची बात तो ये है कि जब ये प्रोग्राम नहीं स्टार्ट हुआ था और इस टॉपिक को बतौर खास पढ़ा नहीं था, वैसे ही सीधा सीधा कभी कोई किताब पढ़ ली थी
सही
दस्तर नामी के दौरान, तो लेकिन बाकायदा नहीं पढ़ा था। तो अजहन में ऐसे ख्याल था कि शायद इस मौजू पर चंद किताबें होंगी या कुछ किताबें होंगी।
अच्छा,
लेकिन जब जारे के प्रोग्राम के लिए पढ़ना पड़ता है और ढूंढने निकले तो वाकई हैरत हुई थी कि बिला मुबालगा एक दो नहीं, दसियों नहीं, बीसियों नहीं, सैकड़ों किताबें हैं।
अल्लाहु अकबर।
और अरबी में, तो फारसी में, तो उर्दू में, उर्दू में तो कम है लेकिन उर्दू वालों में कुछ तो बड़ी अच्छी किताबें, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो यहाँ का वहाँ मिक्स करके, जैसे एक तरीकेकार होता है वो करके इंटरनेट वगैरह पर भी देखेंगे तो ऐसा ही रहेगा। लेकिन माशाल्लाह फिर तो यानी इस वक्त ये जहन बनता है कि शायद कौन से ऐसे बुजुर्ग होंगे जिन्होंने इस पर कलाम ना किया हो, कोई भी मुसन्निफ या जो इल्म के ताल्लुक से मशहूर हैं तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस पर कलाम किया होता है। तो बाकायदा किताबें बहुत सारी मौजूद हैं।
सही,
अगर कोई शौक रखता है और अरबी जानता है तो उसके लिए बहुत आसानी है, वरना उर्दू के तर्जमे भी कई बुजुर्गों की किताबों के मिलते हैं, लेकिन उसके अंदर देखा यह है कि हर तर्जमा उस मयार के मुताबिक हो वो जरूरी नहीं होता, बाज़ जगहों पर कमी बेशी भी होती है। लेकिन बहरहाल किताबें अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसके लिए बहुत कुछ मौजूद है। अलबत्ता माहनामा फैजान मदीना जो है
जी,
उसमें एक पेज का मजमून जो है वो सवाल जवाब की शक्ल में, उसको किताब तो नहीं कहेंगे
ठीक है,
और बाकायदा हर दफा मजमून भी नहीं होता,
हर महीने आता है,
हर माह जो उर्दू फैजान
ठीक है
मदीना है माहनामा, तो उसमें एक मजमून ख्वाबों की ताबीर का पिछले चंद माह से सिलसिला है
माशाल्लाह।
तो उसके अलावा तो कोई ऐसी तहरीर का सिलसिला नहीं।
ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई प्लान है आपका कि ये माहनामा की जो तहरीरें हैं यही किताब की सूरत में आ जाए, कोई ऐसा प्लान होगा?
असल में ये प्लान तो हमारा नहीं होता, ये तो मदीनतुल इल्मिया ही करता है, तो अल्लाहु आलम कुछ कहने।
ठीक है, चलिए जी, बहरहाल माहनामा हर महीने रिलीज होता है
और पूरे साल के लिए एक दफा बुकिंग करा लेंगे तो आसानी है, वरना सुस्ती हो जाती है।
जी ऐसा ही है,
नहीं हमारे साथ भी ऐसा ही है, जब तक खरीदना होता था तो आगे पीछे हो जाता था, और जब से सब्सक्रिप्शन करवा दी तो वन टाइम आपने कर लिया, अब आप छूटे, अब आपको ऑफिस में, घर पर या जो भी आपका एड्रेस है वहां पर इंशाअल्लाह सवजल महीने की इब्तिदा में जैसे ये शाय होता है तो पहुंच जाएगा। अब माशाअल्लाह घर में बच्चे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, मेहमान आते हैं वो पढ़ते हैं, आपने पढ़ लिया किसी को दे दिया, तो कोशिश ये करें कि एक अपने लिए सब्सक्राइब करवाएं, सालाना बुकिंग करवाएं, और एक की कम अज कम किसी दोस्त अजीज कोई इलाके में मोहल्ले में हैं उनके नाम की करवा लें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत सवाब मिलेगा।
क्या बात है जी, क्या बात है माशाल्लाह। जिस भाई ने भी ये सवाल भेजा था हमें किताब से मुतालिक, उससे रिलेटेड जो है वो बहुत सारी मालूमात का खजाना, ये एक पैकेज जो है वो तैयार हो गया है, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। अपनी नीयतें जो है वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अगर आप सब्सक्राइब करवाने की करने की जो है ये नीयत रखते हैं तो ये खुशखबरी वाला पैगाम जो है हम तक जरूर पहुंचाइए। जी सवालात की जानिब बढ़ते हैं, दिखाइए।
मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, कराची पाकिस्तान से ताल्लुक है मेरा। मेरा ये सवाल है, अक्सर और बेशतर लोग कहते हैं कि रात के वक्त ख्वाब जो होते हैं और जो फजर के वक्त सहर के वक्त जो ख्वाब होते हैं वो हकीकत होते हैं, उसमें सच्चाई होती है, तो इसकी वजाहत हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी।
बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है इस तरह का,
इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि ये समझना कि सिर्फ यही सच्चे होते हैं और इसके अलावा सच्चे नहीं होते, ये बात तो दुरुस्त नहीं है।
ठीक है,
यानी कि दिन के ख्वाब, रात के ख्वाब, सुबह के ख्वाब, दोपहर के ख्वाब भी सच्चे हो सकते हैं।
ठीक है,
यानी कि इसका ताल्लुक टाइमिंग का सच्चे या झूठे होने से नहीं है। अलबत्ता ये जरूर है कि रात के आखिरी हिस्से में यानी कि सुबह का जो टाइम होता है, सहर का जो टाइम होता है, तो ये टाइम जो है ये ज्यादा सच्चे होते हैं ख्वाब, और इनकी ताबीर भी जल्द जाहिर होती है।
सही,
और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दो तीन बड़ी प्यारी वजूहात बयान फरमाई हैं कि इस वक्त के देखे जाने वाले ख्वाब क्यों सच्चे होते हैं। तो आपने जो बयान किया उसका खुलासा ये कि एक तो ये बरकत वाला वक्त है,
ठीक है,
اللہ پاک کی خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے اور اللہ پاک کے بعض فرشتے ہیں جو خاص اسی وقت میں اللہ پاک کی رحمت و نعمتوں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے.
صحیح.
اور عبادت گزاروں کی عبادت کا وقت ہے. ویسے تو سارا دن عبادت ہوتی ہے لیکن جو خاص ایک یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت بزرگوں کا جو معمول ہے
صحیح.
وہ یہ ٹائم ہے.
صحیح.
تو چونکہ یہ برکتوں والا رحمتوں والا وقت ہے تو اس وقت میں دیکھے جانے والے خواب ایز کمپیئر ٹو ادر ٹائمنگز زیادہ سچے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے تو یہ کلیئرٹی ہوگی. کیا یہ کہ دیگر ٹائمنگ میں بھی خواب سچے ہو سکتے
ہیں؟ واہ جی ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ایکسپلین ہو گیا ہے. مزید سوال دیجیے.
میرا نام احمد رضا اتاری, میرا تعلق تنزانیہ سے ہے. پانی دیکھنا, پانی جیسے دریا وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ تیر رہا ہے, تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ براہ کرم اس کا جواب عطا فرما دیں.
صاحب کیا
پانی اگر صاف ہے, اجلا ہے, گندا نہیں ہے تو ایک تو یہ بہتری کی علامت ہوتی ہے. دوسرا اس میں سے اگر تیرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے دوسرے کنارے پر پہنچ رہا ہے یا تیرتے ہوئے درست طور پر وہاں سے جا رہا ہے تو یہ مراد کے پورا ہونے, تمنا کے پورا ہونے, ڈیزائر کے پورا ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو صحیح طور پر تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے کامیابی کی علامت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. مزید سوال دیجیے.
میرا نام محمد انس اتاری, میرا تعلق کراچی پاکستان سے. کسی کے خواب میں دشمن بار بار آ رہا ہو اور دھمکیاں دے رہا ہو اور اچانک آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ ارشاد فرما دیجیے گا.
کوئی اس کی خاص تعبیر تو نہیں ہوگی, البتہ یہ غور کر لیں کہ واقعی کسی کے ساتھ دشمنی ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے, دشمنی کا معاملہ ہے, بندہ سوچتا رہتا ہے اس کے بارے میں, وہی چیز خواب میں بھی نظر آتی ہے. البتہ اگر کسی کے ساتھ معاملات اچھے نہیں ہیں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور صلح کی کوشش بھی کریں. بلا وجہ شرعی کسی بھی مسلمان کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ ظاہر ہے کہ اچھی بات نہیں.
میسیجز بھی کچھ شامل کرتے ہیں ناظرین کے, اور سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں سبز گنبد کی جانب سیڑھیاں چڑھ رہا ہوتا ہوں, تو یہ ان کا خواب ہے, کیا ارشاد فرمائیں گے ان کے بارے میں؟
ماشاء اللہ مبارک ہے. ایک تو گنبد خضرا کی زیارت کرنا ویسے ہی بہت ساری برکتوں کا باعث ہے اور اللہ پاک حقیقت میں بھی دیکھنا نصیب فرمائے گا. دوسرا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا سکسیس کی, کامیابی کی اور مشکلات سے چھٹکارے کی علامت ہوتی ہے. تو دونوں چیزیں پازیٹیو ہیں, اچھی ہیں, اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اور اگر کسی تنگی میں تھے, کسی مشکل میں تھے جن دنوں خواب دیکھا, تو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں, اس سے آسانی نصیب ہوگی.
ٹھیک ہے جی. سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی بلی اور ایک بڑا بلا جو بہت بڑا دکھائی دے رہا ہوتا ہے وہ مجھے کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے, یہ خواب ہے ان کا؟
اپنے کھانے پینے پر, اپنے سونے جاگنے پر, اپنے کام کاج پر, روٹین پر غور کریں, کسی ایسی چیز میں مبتلا تو نہیں کہ جو بیماری کا باعث ہو سکتا ہو. اگر ہے ایسا تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں, ورنہ ہو سکتا ہے کسی بیماری کا شکار ہوں. بعض اوقات ڈاکٹر نے ہمیں سجیسٹ کیا ہوتا ہے, کچھ پرہیز بتائے ہوتے ہیں, یا ویسے ہی اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ اس معاملے کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہوتی ہے, لیکن ہم اسے احتیاط نہیں کر رہے ہوتے. تو احتیاط کا پہلو جو ہے وہ تھامے رکھیں اور انشاءاللہ بہتری ہوگی, ورنہ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا.
جی مزید کچھ آڈیو کال دیجیے.
میرا نام محمد نعیم اتاری ہے. میری وائف کو خواب میں چمکدار چاندی کا ملنا کیسا ہے؟ اور ویسے تو ہمارے حالات تنگ دست ہیں جس کی بنا پر ہم پریشان حال رہتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو خواب میں خوش پاتی ہے اور کسی سے چمکدار چاندی لیتی ہے.
اچھا ہے, پوزیٹیو ہے, انشاءاللہ چھٹکارا نصیب ہوگا. جو بھی مشکل ہے اس سے آسانی نصیب ہوگی. اپنی محنت, اپنی کوشش جو ہے وہ جاری رکھیں, اسباب ترک نہیں کرنے چاہیے, لیکن نظر جو ہے وہ اللہ پاک کی رحمت پر ہی رہنی چاہیے. اور عورت کے لیے سونا چاندی کا حاصل کرنا یہ خوشخبری ملنے کی دلیل ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ نے وقت تو نہیں بتایا, ان قریب اللہ پاک آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کی سعادت عطا فرمائے.
مزید
یہ خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے پیچھے بہت سارے کتے اور سانپ جو ہے نا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. سوالوں میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟
जी अच्छा नहीं होता और बुरे लोगों की नुकसान पहुंचाने वालों की ये अलामत है। अल्लाह पाक की रहमत पर उम्मीद रखें, अपने ज़ाहरी जो मामलात हैं जो चीज़ें हैं उनको भी बेहतर करें और दुआ भी करें, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, कुछ सदका कर दें इस नीयत के साथ कि अल्लाह पाक बुरे लोगों से आपको महफूज रखे, इंशाल्लाह ज़रूर करम होगा। मजीद,
मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है, मुझे ख्वाब की ताबीर पूछनी थी कि मैंने देखा ख्वाब में कि कुछ डकैत मेरे पीछे लग गए हैं और मैं फिर किसी के घर में घुस गया, इसकी क्या ताबीर होगी?
ठीक है, देखिए बाज़ औक़ात कोई वाक़या, कोई ख़बर, कोई ऐसी चीज़ हमारे अतराफ़ में वक़ूअ पज़ीर होती है या सोशल मीडिया का दौर है आजकल तो एक से बढ़कर एक खबरें आती रहती हैं, तो बंदे के जहन पर किसी चीज़ का गलबा होता है और वही चीज़ ख्वाब में नज़र आ जाता है, सही ये भी पहलू होता है। दूसरा हो सकता है कि आप किसी आजमाइश के करीब हों और किसी मामले में मुबतला हो सकते हों, बाज़ औक़ात लेन देन के मामलात होते हैं, कारोबारी मामलात होते हैं, तो बंदा मज़ीद कॉन्शियस रहे। अगर आपका कोई भी इस तरह का काम है कि जो किसी आजमाइश में आपको मुबतला कर सकता है, मिसाल है रकम लाने ले जाने का आपका सिलसिला है, तो उसमें बंदा एहतियात से काम ले। बाज़ औक़ात इस तरह के ख्वाब हमें तंबीह के तौर पर भी दिखाए जाते हैं, बंदा बेहतियाती कर रहा होता है और उसके जो पूरे तकाजे होते हैं काम के वो पूरे नहीं कर रहा होता, तो फिर हो सकता है माली तौर पर किसी आजमाइश का सामना हो। तो बंदा एक तो अपने मामलात को अच्छे से देखे और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करे, अल्लाह पाक किसी भी हादसे से महफूज फरमाए। नेक्स्ट कॉल।
ख्वाब में शाम का डसना कैसा, इसकी तबीर इरशाद फरमा दें।
बुरा होता है, किसी से नुकसान पहुंचने की अलामत होती है, ज़ाहिरी असबाब पर भी गौर करें और अल्लाह पाक की बारगाह में आफियत की दुआ भी करें। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल प्लीज।
कुरान पाक ख्वाब में देखना कैसा है?
कुरान पाक बहुत मुबारक है और अल्लाह पाक की जानिब से तौफीक मिलने की, राह रास्त पर सीधे राह पर चलने की एक अलामत होती है। कोशिश भी करें नेक काम करने की और गुनाहों से बचने की, अल्लाह पाक आपको खास तौफीक भी अता फरमाए।
यूट्यूब पर भी हमारे साथ जो है वो एक तांता बंधा हुआ है सवालात का, और सवाल ये इन्होंने पूछा है कि सर ख्वाब में मुर्गी के अंडे देखना ये कैसा है और तकरीबन 70 दर्जन हैं।
देखिए अंडे की कई ताबीरें हैं,
ठीक
है, बाज़ बच्चों से भी इसकी ताबीर की जाती है, बाज़ औक़ात नफे से भी, बाज़ औक़ात फायदे से भी इसकी ताबीर की जाती है, लेकिन हो सकता है किसी का काम ही अंडों का और रात दिन वो दर्जनों अंडे ही देख रहा है,
जी
शॉप है या होलसेल का काम है, तो अगर उसकी रूटीन में ये चीज शामिल है तो फिर इसकी कोई ताबीर नहीं होगी।
ठीक है जी, मजीद सवाल जो है ये है कि ख्वाब में जब भी देखता हूँ तो किसी को मरा हुआ ही देखता हूँ या मरते हुए देखता हूँ या फिर उनको कोई कत्ल कर रहा होता है ये देखता हूँ, तो मुझे इसी तरह के ख्वाब आते हैं, ये लिखा है इन्होंने,
ना देखा करें।
ठीक है, क्या करें ऐसा,
जब भी देखते हैं मरा हुआ ही देखते हैं तो ना देखा करें।
ठीक है,
दुआ करें जिसके लिए आपने देखा है। अब इसकी वजह तो बयान नहीं की जा सकती कि क्यों ऐसा है, तो हो सकता है शैतान की तरफ से हो और परेशान करना मकसूद हो उसका, तो इसकी तरफ तवज्जो ना करें, ना देखने से सारे के ख्वाब हमारे इख्तियार में तो नहीं है, तो इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो ना करें। ये भी एक होता है तसलसल, बाज़ औक़ात किसी एक ख्याल में या किसी ख्वाब में हम स्टक हो जाते हैं, हमारा दिमाग उसको, अब रोज़ाना इस खदशे के साथ सोएंगे कि यार आज फिर वो नज़र ना आ जाए,
जी
वही नज़र आ रहा होता है, कोशिश करें कि उससे अपने आप को ख्याल को दूर रखें और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते रहें, अल्लाह आसानी फरमाएगा। जब इस तरह तसलसल से कोई चीज़ नज़र आ रही होती है तो फिर उसकी ताबीर नहीं हुआ करती, वो किसी और सबब से हुआ करती है जिसका ताबीर से ताल्लुक नहीं होता।
ठीक है जी, यानी खुद पे गौर करें कि आपकी एक्टिविटी में, डेली की रूटीन में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से आप रात में जो है वो इस तरह के ख्वाब देख रहे हैं। अमूमन इस तरह की चीजें जो है वो आपको दिन भर की जो एक्टिविटी है उसका भी ये असर हो सकता है,
इसको भी होता है, और बहुत ज्यादा इम्पेक्ट जो है वो आजकल जो है ना वो नेगेटिव खबरें देखना करना, यानी हमारा हाल तो ये हो गया है, अगर कोई अच्छी बात भी कर रहा होता है ना तो उसका भी नेगेटिव लोग तलाश करते हैं, भाई वैसी अच्छी खबरें कम होती हैं, उसमें भी कोई अगर पॉजिटिव बात करता है तो नहीं, तो बाज़ औक़ात जो है ना ऐसी हालत हो जाती है बाज़ इलाकों की या कौमों की या कल्चर ऐसा डेवलप हो जाता है, माहौल ऐसा क्रिएट हो जाता है कि हर वक्त नेगेटिविटी ही है, और शायद इसी वजह से उमूमन लोग जो है वो नेगेटिव खबरें फैला रहे होते हैं, उसके व्यूज जो है ना वो पॉजिटिव से ज्यादा मिलेंगे। ये हमारी एक रिफ्लेक्शन भी है दिमाग की
जी।
कोशिश करें कि अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटी में रखें, सोशल मीडिया और इस तरह की चीजों से अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखें।
इंसान की अपनी शख्सियत पर इस सोच को आप किस तरह से देखते हैं कि ये जो नेगेटिविटी की सोच इंसान की अपनी शख्सियत को कितना मुतासिर कर सकती है,
तबाह कर सकती है? मैक्सिमम तो मैं ये कह सकता हूँ कि नेगेटिविटी आपकी जिंदगी को, आपकी फैमिली लाइफ को, पर्सनल लाइफ को तबाह कर सकती है। अब उस तबाही के दर्जात हो सकते हैं,
सही है,
किसी को कम किसी को ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव आदमी कामयाब नहीं हो सकता, और कामयाबी मिलने के बाद भी वो बेचारा नेगेटिव ही होता है,
सही,
तो बहुत मुतासिर हो सकता है, सेहत खराब हो सकती है, कामयाबी का रेशो कम हो सकता है, और दुश्मनियां भी करवा सकती है नेगेटिव सोच जो है आपकी टोटल जो पर्सनैलिटी है उसको डैमेज कर सकती है। मुस्बत सोच इंसान को कामयाबी दिलाती है,
सही,
और जो मनफी सोच है वो इंसान की नाकामी का सबब हो सकता
है। क्या बात है, माशाल्लाह। नाज़रीन, सोच को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी सोच एक बड़ी सोच करना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर खास स्पेशल इस पर जो है इस मौजू पर एक पूरी सीरीज जो है वो आपको मदनी चैनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है ये मिल जाएगी। मैं रेकमेंड करूंगा उन तमाम नाज़रीन को कि जो चाहते हैं कि आप दुनिया में रहते हुए और आखिरत के लिए भी आप बहुत से मामलात के अंदर कामयाबियां हासिल करें, तो वो किस तरह से हासिल की जा सकती हैं, एक बाकिरदार मुआशरे का शख्स किस तरह से बना जा सकता है, ये सीरीज जो कि 10 से 12 एपिसोड पर मुश्तमिल है ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। और अल्लाह ने चाहा अगर आप ये 12 एपिसोड देखने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है महसूस करेंगे और आपके लिए कामयाबी के जो रास्ते हैं वो भी इंशाल्लाह खुलेंगे। एक और सवाल शामिल करना चाहता था मैं, अहमद राजा मेहर साहब हैं सवाल पूछ रहे हैं, कहते हैं कि सर ख्वाब में लोहे की सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखना ये कैसा है, जवाब इनायत फरमाए।
कोई सी भी सीढ़ी हो स्टेज पर ऊपर की जानिब चढ़ते हुए देखना कामयाबी की और मुराद के पूरा होने की अलामत।
ठीक है जी, चलिए जी मजीद कॉल दीजिए।
ख्वाब मैंने अपने अब्बू के बारे में देखा है कि अब्बू ख्वाब में आए, वो बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर मिट्टी डाल के चले गए हो और मुझसे जान छुड़ा के गए हो, सर उस ख्वाब की तादीर चाहिए।
ऐसा तो नहीं होता, औलाद क्यों अपने वालिदैन से जान छुड़ाएगी? यार है कि हम आपकी बुनियाद पर औलाद पर कोई हुक्म नहीं लगा सकते। अलबत्ता औलाद को ये ज़रूर गौर करना चाहिए कि क्या अपने वालिद साहिब को दुआ और इसाले सवाब करते हैं, अगर नहीं करते तो यूं समझे कि एक तरह से आपको तंबीह है, और अगर करते हैं तो उसमें मज़ीद इजाफा करें और वालिद साहब के लिए दुआ करते रहें, इसाले सवाब करते रहें, यही उनका हक है और इसी से इंशाल्लाह उनको राहत नसीब होगी।
अल्लाह पाक हमारे मरहूमीन पर रहमत की नज़र फरमाए और अपने हबीब के सदके पर उनकी मगफिरत फरमाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा और हमने कोशिश की है कि आज भी आपके सवालात को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। मदनी चैनल देखते रहिए और देखने की दावत आम करते रहिए, नमाजों की पाबंदी खुद भी करते रहिए और दूसरों को पढ़ने की दावत भी देते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व सहबिही व सल्लम।
आँख जब सोती है तो खुलते हैं दरवाजे।